हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैटबस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स, और आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे शो में पूरा एक घंटा एक मारूफ सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर। आपसे तारुफ हम बाद में करवाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट कीजिए और अपने क्वेश्चंस वहां पर भेजिए, क्योंकि हमने इससे पहले फेसबुक का जो हमारा चार्ट बस्टर्स का पेज है वहां पर बताया था कि आज कौन हमारे शो में मौजूद होंगे, तो वहां पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए facebook.com/chartbusters VOA, और प्रोग्राम के दौरान आपके नाम के साथ, आपके शहर के नाम के साथ हम आपके क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पहले गीत की तरफ। पहला इसलिए कहा, शो में भी पहला है और उन्होंने यही गीत सबसे पहले गाया और बहुत सुपरहिट रहा, तो आप भी सुनिए उनका ये गीत। वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया जेब रांझा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं फायजा बुखारी और इंजीनियर हैं जो गिल, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं facebook.com/chartbusters VOA, और कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे मारूफ गुलकार बिलाल सईद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। और इससे पहले कि वो उनसे हम बातचीत का आगाज करें, आपके कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ क्योंकि फिर इनका मौका नहीं मिलेगा और आप नाराज़ हो जाएंगे। फैज अहमद खान बलोच मीरनेवाला झंग से लिखते हैं कि सादिया जेब रांझा साहिबा, आपको गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आपको और आपकी तमाम टीम को और जितने भी दुनिया में लोग ईद मना रहे हैं उन सबको और शुक्रिया अदा किया है कि हमने आपकी गज़ल शामिल की. थैंक यू सो मच. और माजिद ज़मान शानी घोटकी से लिखते हैं कि आपको फ़ायज़ा बुखारी साहिबा को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हों. ईद से पहले भी हम लोगों ने एडवांस आप लोगों से मुबारकबादें वसूल की थी और अब ईद गुजरने के बाद भी आप सब ने हमें ईद के बहुत सारे पैगाम और दुआएँ भेजी हैं. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अरशद नदीम घल्लू भक्कर से लिखते हैं, सादिया जी और आप और आपकी पूरी फैमिली को हाँ ईद कुर्बान मुबारक. वही बात कि मैं जो भी मैसेज देख रही हूँ सबके सब ईद के मैसेज हैं. दिया नूर ने हमें मैसेज भेजा है, बल्कि बड़े अच्छे उन्होंने स्टिकर्स भेजे हैं और बड़े खूबसूरत तस्वीरों के ऊपर उन्होंने भी ग्रीटिंग्स हमें भेजी हैं. बहुत शुक्रिया आपका भी. और शाहनवाज़ जिस्कानी हैं खैरपुर सिंध से, लिखते हैं कि सादिया जी कैलेंडर मिला नहीं है. फ़ायज़ा हंसने लग पड़ी है इस कैलेंडर की बात पर, क्योंकि आप यकीन कीजिए हम इतना बिज़ी रहे हैं, झूठ नहीं कह रही, हम इतना बिज़ी रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी पहली तरजीह है हम दोनों की, ठीक है. और शुभ हसन निहालिका रोडा थल खुशाब से लिखते हैं, ये पिछले शो के लिए उन्होंने लिखा था कि मेहमान को मेरा बहुत बहुत सलाम और सवाल ये है कि कभी म्यूज़िक से दिल उचाट भी हुआ, तो यूँ करते हैं शुभ हसन निहालिका ये सवाल जो आपने गुज़श्ता हमारे मेहमान से पूछा था, हम आपने आज के मेहमान से पूछ लेंगे कि ऐसा हुआ कभी कि म्यूज़िक से आपका दिल उचाट हुआ हो और सोचा हो कि क्यों ना कोई और लाइन इख्तियार कर ली जाए और छोड़ छाड़ के म्यूज़िक कुछ और करने का सोचा हो कभी, तो आपका ये सवाल मैं हमारे आज के मेहमान से पूछ लूँगी. देखिए सवाल तो आपका वैलिड रहा, गुज़श्ता उसमें नहीं पूछ सके तो आज पूछ लेंगे. तो आप हमें मैसेज कीजिए, काफ़ी सारे मैसेजेस आपके आ भी रहे हैं और मैंने अपना लाइव जो लिंक है इस शो का वो चार्ट बस्टर्स के जो फेसबुक पेज है वहाँ पर शेयर किया है, तो आप उसको वहाँ सुन भी सकते हैं. और ज़रूर बताइएगा जब आप हमारा लिंक क्लिक करते हैं तो क्या आप सुन पाते हैं हमारा शो, ये बात भी ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं जानना चाह रही थी. तो इससे पहले, क्योंकि फिर हमें गीत सुनाने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाएगा, तो इससे पहले कि बिलाल स्टूडियो में आए हम उनका एक और गीत आपको सुनवाते हैं. तो सुनिए बिलाल का ये खूबसूरत गीत.
बेपरवाह नाल अखियां लाइयां ताइयों हारियां ने, एक एक करके आसां इस दिल ने मारियां ने. बेपरवाह नाल अखियां लाइयां ताइयों हारियां ने, एक एक करके आसां इस दिल ने मारियां ने. अखियां करन खतावां मिलदी दिल नूं फेर सजा, हसते ना कदे वेखे जेड़े कर दे लोग वफा. हर वेले ओ रोग हिजर विच डंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे डंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे डंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे डंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे डंगे रहंदे ने. विछोड़े जूंदियां दे नाल चंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे टंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे टंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे टंगे रहंदे ने, फिर किलियां दे नाल बरां दे टंगे रहंदे ने. कैसे खाब सजावे मिट्टी दे जिस्मां दे विच प्यार पिया लभदा वे दिल दुनिया दी खेडे लग के कैसे काब सजावे मिट्टी दे जिस्मां दे विच प्यार पिया लभदा वे ताइयों हसे बुलियां कोलो संगे रहंदे ने
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया जेब रांझा और कुछ ही देर में हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। अगर हमारे मेहमान आ तो चुके हैं ऑफिस में, लेकिन चूंकि सारी चेकिंग होती है अंदर आने से पहले, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पहले से ही खड़े थे, इसलिए वो स्टूडियो तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। झंग से हमें कॉल आई है नासिर की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर।
वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद नासिर जंग। आपने जिस मेहमान को बुलाया, मेरा ये फेवरेट सिंगर है और इसने आपने जो पहले सबसे रांझे वाला गाना सुनाया वो मेरा फेवरेट गाना था, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको हमारी पसंद का पता था, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आजकल अल्लाह जिता साहब मेहमान नवाजी पे अपना वो मेहमान बन के गए थे आबद गुरमानी साहब के यहाँ, तो जितने दिन उधर रहे इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। जरा उनको भी थोड़ा समझा दें कि अगर कभी किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो पीछे जो आपके साथ इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, तो उनका फोन भी उठा लिया।
सेलिब्रिटी बन गए हैं, है ना, वो तो सेलिब्रिटी बन गए हैं अल्लाह जिता शाकिर साहब, और कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो बिल्कुल नहीं, जरूर कहेंगे ना सिर्फ, फिक्र ही ना करो, आने दो।
तो बाकी मेरी तरफ से अल्लाह जिता साहब को, आबिद गुरमानी, हाजी गुलाम और जितने भी सुनने वाले डॉक्टर आजम साहब, आपकी जुबैदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
अच्छा तो नासिर ये बताओ, कुछ पूछना है आपने? अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारे साथ बिलाल सईद, तो कुछ पूछना चाहते हैं आपकी तरफ से, मैं सवाल पूछ लूंगी।
मेरा सवाल मेरी तरफ से सवाल ये पूछ लीजिए कि आपने आज तक जितने भी गाने गाए हैं उनमें कौन सा गाना है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और कौन सा ऐसा गाना है जो आपको पसंद नहीं है?
बिल्कुल,
आपका किस शहर से ताल्लुक है?
सियालकोट से। सियालकोट से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल पूछ लूंगी जैसे ही वो आएंगे। बहुत शुक्रिया नासिर। और हमारे साथ जनूबी वजीरिस्तान से मौजूद है अब्दुल माजिद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद। जी कैसे हैं आप माजिद साहब?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं आपका और सामीन का अस्सलाम वालेकुम कहता हूं।
वालेकुम सलाम।
बाद सलाम आरजे के मैं तो आपने इलाके का बात इसलिए करता हूँ कि वो भी ये प्रोग्राम बहुत मजे से सुनते हैं ताकि उनके दिलों को तो पट लगेगा ना। पूरे पाकिस्तान में जितना बजट हमारा खर्च होता है तकरीबन, अगर उतना हो लेकिन कम नहीं हमको मिलता है, हमारे इलाके को जो बजट मिलता है, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारे इलाके में न पीने का पानी है, न जो है का ना कुछ भी नहीं होता। हमारा तरक्की का काम है तो सिर्फ हमारा मैनेजर साहब और जो है का ना डी सी साहब, प्लंकाई साहब, छोटा साहब, ये सब कुछ कहते हैं। क्या ये जो अदालतें ये हमारे इलाके में नहीं आ सकते, ये जो नेट की अदालत है, ताकि हमारे लिए भी कुछ तो बने का ना, हमारे बेचारे लोगों के पानी से भी नमारू में स्कूल वाला जो है कर हमारे हालत ऐसे है, क्या भी जो फौज आया इसने जो हाजिरी मुकम्मल कर रहे हैं लोगों का के इसकी वजह से मास्टर लोग हाजिर देता है, वरना स्कूल में भी पहले जो है कर यंगर लोग बांधते थे कर स्कूल की जगह पर।
बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी कैफियत भी, आपकी जो बात अब कर रहे थे वो सारी बातें, और सिर्फ वही नहीं, आप यकीन कीजिए बहुत सारी ऐसी जगहें जहां पर ये सारे मसाइल मौजूद हैं, और काफ़ी सारी जगहों पे इस तरफ तवज्जो दी गई है, और कुछ बहुत सारी जगह ऐसी हैं भी जहाँ पर अभी तवज्जो नहीं दी गई, और जिसकी तरफ अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि किन इलाकों में पानी, स्कूल, गोस्ट स्कूल कौन से हैं, गोस्ट स्कूल वही जिनका आपने जिक्र किया है कि वहाँ पर जानवर बांधे जा रहे हैं और असातिज़ा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, गायब हैं, तो ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो जब आती रहती हैं तो उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर काम आगे किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपके इलाके की तरफ भी ध्यान जाएगा और इस तरह के स्कूलों के बारे में गौर किया जाएगा जहाँ असातिज़ा भर्ती तो किए गए हैं लेकिन वो मौजूद नहीं हैं, और वहाँ पर आप बता रहे हैं कि जानवर वगैरह बांधे जाते हैं, तो ہمیں یقین ہے کہ اس طرف بھی حکومت ضرور دھیان کرے گی, کیونکہ اس کے علاوہ آپ جیسے, آپ تو وزیرستان کی بات کر رہے ہیں, کراچی کے گرد و نواح میں جیسے ایک اتنا بڑا شہر ہے پاکستان کا, اتنے اسکول موجود تھے جن کو گھوسٹ اسکول کہا جاتا ہے, یعنی اساتذہ وہاں کاغذوں میں تو موجود ہیں لیکن بذات خود وہاں پر موجود نہیں ہوتے, نہ ہی بچے ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ بھی بالکل بند پڑے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے, بہت ساری جگہوں کے یہ مسئلے ہیں. اور جہاں تک آپ نے پانی کی بات کی, ہم اپنے تمام پروگرامز جو ہمارے کرنٹ افیئر کے پروگرامز ہیں ان میں ان ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں, اور باقی ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے ذاتی سطح پر اور حکومتی سطح پر, اور باقی جو این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں. تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, تو آپ ضرور کال کیجیے ہمارے کرنٹ افیئر کے پروگرام میں, وہاں پر اگر کوئی ماہر موجود ہوگا تو وہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, کیوں نہ ایک اور گیت سنوا لیں, کیونکہ مجھے یقین ہے جب بلال آ جائیں گے تو ہمیں زیادہ موقع نہیں مل پائے گا, تو ہم ان کا ایک اور گیت سنتے ہیں.
میں یاد تیری وچ رو رو گزارا سجنا وے آ جا میں ہر پل تینوں آ جا مارا اکھیاں نال تکرا وا دل وچ تینوں یاد کرا میں اپنے سونے رب تو وی تیری ہی فریاد کرا میں دل میرا دیو دہائی نہ کر سجنا بے پرواہی تیرے نال میں یاری لائی کانوں تو نہ توڑ نی پائی لگیاں نوں توڑ نی باجا اک واری تو سجنا آ جا دل میرا تینوں بلاوے آ جا چیتی آ جا
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں چارٹ بسٹرز, اور اس وقت ہمیں کال کی ہے لیا سے محسن علی صاحب نے. السلام علیکم محسن.
جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی
جی کہیے محسن.
جی جی اچھا ہاں بھائی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس دن آپ کو پچھلے دنوں پروگرام ہوا تھا جو ہے نا, اس میں ایجوکیشن کے بارے میں مختلف جو ہے نا لوگوں کی رائے بھی لی گئی, اور وہ بہت ویسے اچھا پروگرام تھا. تو ایک جو ہے نا میں ایشو آپ سے وہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں, آپ کو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے تو اس میں نا ویسے تو اوور آل ہے جو سیمسٹر سسٹم ہے ویسے اس میں نا بہت ساری پرابلم ہوتے ہیں. ویسے اینول میرے خیال میں اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ اس میں تو نالج ہی نہیں ہوتا جو ہے نا, وہ دو تین ماہ میں دو سیمسٹر بس ایسے پلک پھپکتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو اس میں نالج تو کچھ بھی نہیں آتا, ایسے نام کی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اس ایشو کو جو ہے نا آپ کے توسط سے ویسے اس کو اجاگر کرنا چاہیے.
بلکہ یوں کرتے ہیں نا محسن, محسن یوں کرتے ہیں کہ جو اگلا ہمارا جمعے کا شو ہوگا نا, اس میں آج جیسے ہمارے تمام سامعین جو بھی ہمارا شو سن رہے ہیں ان کو میں کہوں گی کہ اگلے جمعے کو وہ ہمیں کال کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کس حق میں ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سیمسٹر سسٹم بہتر ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ سالانہ امتحانات ہونے چاہیے سال کے آخر میں, ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, اور جن کی یہ رائے ہے کہ سیمسٹر سسٹم ہونا چاہیے تو ان کے خیال میں کیوں, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے آخر میں پہلے کی طرح ہی آپ کا امتحان ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے, سارا سال آپ پڑھتے رہیں اور سال کے آخر میں آپ کے امتحانات ہوں تو وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ تو آپ ہمیں اگلے جمعے کو آپ سن لیجئے. یہ محسن صاحب نے لیا سے ہم سے یہ سوال کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ان پٹ دیں, اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں سیمسٹر سسٹم بہتر ہے یا پھر سال کے آخر میں ایک ہی دفعہ آپ کے امتحانات ہونے چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا نالج نہیں مل پاتا جتنا سال بھر پڑھنے کے بعد ملتا ہے. تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, اور اس کے بعد میں کوشش کروں گی کوئی ایک ماہرین تعلیم جو ہے ان سے بھی ہم بات کر لیں, اور ان کی رائے اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے لے لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بڑی اچھی ویسے آپ نے بات کی ہے, انٹرسٹنگ ہو جائے گی. تو اگلے جمعے کو آپ لوگ تیار رہیے گا. سجاد احمد ہمارے ساتھ ہیں ڈیرہ غازی خان سے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک, آپ کہیے. جی جی بولیے.
اچھا بھائی, آج میں گلوبل ویلیج کو ایک ڈیفینیشن تعریف دینا چاہتا ہوں. اکثر پوچھتے ہیں آپ کے پروگرام میں گلوبل ویلیج کیا چیز, گلوبل ویلیج کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, گاؤں بن گئے.
اچھا,
میں نے تعریف لکھی تھی بہت عرصہ پہلے, آپ کو بتا دیتا ہوں گلوبل ویلیج ہے کیا.
اچھا ذرا کوئکلی بتائیے.
میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, علم نے دنیا کو فاصل میں سمیٹ کر وسیع کر دیا ہے. علم نے دنیا کو فاصلوں میں سمیٹ کر وسیع کر دیا. اس کی انگلش شاید یہ ہوگی, نالج ہیز واسٹن دا ورلڈ بائی رائٹنگ اپ دا ڈسٹینسز. دنیا پہلے ہمارے لیے بہت چھوٹی تھی, ہم کم چیزیں جانتے تھے ارد گرد, لیکن اب جو ہے نا دنیا وسیع ہو گئی ہے, ہماری ریچ پہنچ چاند پر بھی ہو گئی ہے, انٹرنیٹ پہ ہر کونے میں ہو گئی ہے. یہ اس کی مکمل تعریف ہے. اکثر تعریف جو کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں چھوٹی دنیا ہو گئی ہے, گاؤں بن گئی ہے, فاصلے سے مٹ گئے ہیں, دنیا وسیع ہو گئی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. ہر چیز کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو سامنے نظر آتا ہے, یعنی دو مطلب ہوتے ہیں اس کے. تو جو اس گلوبل ویلیج کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا دیہات بن گئی ہے یا دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ آپ سیکنڈوں میں کہیں پر رابطہ کر سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کچھ بھی جاننا ہو گوگل کیجئے, آپ کو مشرق و مغرب, شمال جنوب, ہر چیز کے بارے میں آپ کو فوراً معلومات ملتی ہے. تو اس علم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سمٹ گئی ہے. آپ کو امریکہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, لائیو آپ کو فوراً ملتا ہے. پہلے مہینوں میں ایک خط ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتا تھا, تو اس کو کہتے تھے طویل فاصلہ. ٹھیک ہے, اور اب وہی خط, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, واٹس ایپ پہ آپ کال کریں, ویڈیو کال کریں, اس سمٹنے کو, اس کوئکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کو, انفارمیشن کا ایک سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کو آپ کہتے ہیں گلوبل ویلیج. یعنی سب کچھ آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گیا ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے. تو چلتے ہیں ہم اگلے گیت کی طرف. اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں, آپ تھوڑا سا میوزک انجوائے کیجئے. ان کا بلال سعید کا یہ والا گیت بہت بڑی ہٹ تھا.
کچھ ہو ਜੁਤਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਚੋਕ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮਚਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰ
ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੇਰੀ
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशाब से डॉक्टर मोहम्मद आजम. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम. आज मुझे लग रहा है कि बाजी साहब का तबीयत ठीक नहीं है.
कैसे
आज पता चल रहा है कि जुकाम भी अमेरिका में पहुंच चुका है.
बिल्कुल सही पहचाना आपने.
शुरू हुआ था ना भाई तो मैंने समझा था कि आज को और प्रोग्राम करने लेकिन थोड़ा सा जो आपको लहजा समझा तो मैंने कहा ये तो सादिया साहब हैं लेकिन जुकाम ने मैं घेर रखा है.
बस सही के डॉक्टर हैं. आज मैंने भी सनद दे दी आपको.
इंशाल्लाह
यानी वो डॉक्टर हैं.
ईद मुबारक हो.
थैंक यू सो मच. यानी डॉक्टर आजम साहब आप तो वो डॉक्टर हैं जो फोन पर भी नब्ज मरीज की समझ जाते हैं.
अल्लाह के फजल करम से माँ बाप की दुआ से देख कर बता देता हूँ कुछ क्या है क्या होने वाला है. अल्लाह का करम
है.
और मेरी वालदा साहब आपको सलाम कह रही
हैं. वालेकुम अस्सलाम.
वो नमाज पढ़ के बैठी थी तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के प्रोग्राम आने वाला है. मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आने वाला है.
ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. माओं की दुआएं तो बहुत ही कीमती होती हैं. थैंक यू सो मच.
वो आपको जाए नमाज पर बैठ के याद कर रही थी दुआओं में याद रखा था.
जबरदस्त.
और कहती हैं कि शादी बैठक का प्रोग्राम. मैंने कहा बिल्कुल आने वाले. और मैं तो काफी टाइम से लगा कॉल कर रहा हूँ. नासिर भाई ने कहा है कि काले तो वो ले रहे हैं. मैं ये समझा था कि आज आपने सिर्फ फेसबुक पे जाना है तो मैं रेडियो बंद करके उठ गया था.
इरादा हमारा यही था.
मैंने फोन किया.
इरादा यही अच्छा, था कि वो आ जाए तो चलो गपशप लगाएंगे तो वो नीचे फंस गए.
इस तरह लगता है जिस हाँ. तरह ईद आने वाली होती
है. बात है. बहुत
तो
शुक्रिया.
ये इस तरह ना करें कि हमारी काले लें मेहमान भी सदा हमारी आंखों के बैठ
बिल्कुल
बैठ कर आए.
थैंक यू सो मच. जल्दी से ना. ओ आपकी कॉल ड्रॉप हो गई. मैंने भी यही कहा था कि जल्दी से नाम ले दें. तो माजरा चाहती हूँ डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब. आपकी वालदा और वाले साहब का बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सलाम. और अल्लाह देता शाकिर से बात करते हैं जिन्होंने हमें पिपली अड्डा विहाड़ी से कॉल की है. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी. हमारे पूरे इंटरनेट रेडियो फोरम की जानिब से आपको गुज़श्ता ईद मुबारक. पहले भी
बहुत शुक्रिया. अच्छा आप हमारा गिला सुने ना. इससे पहले कि आप अपने सारे दोस्तों के नाम लेना शुरू हो जाएं आप गिला सुन लीजिए. नासिर ने जंग से गिला किया है कि हम भी आप के चाहने वालों में से हैं लेकिन जब आप आबिद गुरमानी साहब के साथ होते हैं तो बाकी दोस्तों को लिफ्ट नहीं कराते. वजह
मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैं दरियाए सिंध गुरमानी साहब का इलाका है दरियाए सिंध के किनारे हम गए तो मुझे खुशी उस वक्त हुई तो एक बुजुर्ग जिनकी कम से कम 75 साल उम्र थी उन्होंने रेडियो दरिया के किनारे रखा हुआ था. जब से मुलाकात हुई आबिद गुरमानी और मेरी तो उन्होंने कहा कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का शो जो है ना शादी का देखना है ज्यादातर तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। यकीन करें उस वक्त कितनी खुशी हुई, वो आपको सलाम भी कह रहे
थे।
मैं नाम भूल गया हूँ, मैं कल आबिद गुरबानी साहब से पूछूंगा, उन्होंने नाम अपना बताया था और कह रहे थे कि मेरा जरूर सलाम पेज करना है, तो वो नाम मुझे भूल गया है मैं दोबारा चला। तो बड़े दरिया के जो लोग होते हैं इनके दिल भी दरिया की तरह होते हैं और बड़ी मोहब्बतें करने वाले होते हैं।
बिल्कुल, मैं तो इस चीज के बहुत शुक्रिया अलादिता शाकिर साहब, और मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि लोग जो हैं ज्यादातर लोग, बल्कि मुझे तो लगता है सारे ही लोग हर जगह के बहुत ही मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो मेरा इस बात से यकीन उठने लगता है, ये जितने भी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि ये लोग नहीं है, ये कोई और है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। अदरवाइज जो हमें कॉल करते हैं, जो हमसे मिलते हैं, जिनको हम देखते हैं, लगता है बस मोहब्बत के अलावा इनको कुछ भी करना नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हुआ कुछ यूँ है कि हमने जो वादा किया था आपसे, और जिनकी वजह से हम आपकी फरमाइश के जो गीत थे वो साथ लेके नहीं आए, कि आज हमारे मेहमान होंगे, बल्कि अमेरिका में हमारे मेहमान थे बिलाल सईद साहब। तो यहाँ ये होता है, सिफारिश तो चलती नहीं है कि आपके बड़े अफसर गए तो बात आपकी मान ली जाए, नहीं। सिक्योरिटी पर मौजूद, जो दरवाजे से हम दाखिल होते हैं तो वो हमारे कागज़ चेक करते हैं कौन है, हर रोज़ हमें भी अपना बैज वहाँ पर वो दिखा के आना होता है, स्कैन करके आना होता है, तो वो पासपोर्ट नहीं लाए थे अपना और वो नहीं आ पाए हमारे साथ, अंदर दाखिल नहीं होने दिया कि आपका पासपोर्ट नहीं है, चाहे आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, चाहे आप कितने बड़े हीरो हैं, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इवन बिल्डिंग से कोई कितना ही इंपॉर्टेंट शख्स जाके उसकी सिफारिश क्यों ना करे, वो नहीं आ सकते अंदर, तो उनको वापस जाना पड़ा। तो अब वो अंदर नहीं आ पाए, हमारे स्टूडियो में नहीं आ पाए। हम कोशिश करेंगे फ़ोन पे हम उनसे बात कर लें, अगर फ़ोन क्लियर हुआ, क्योंकि जाहिर है अब वो अपनी गाड़ी में वापस जा रहे होंगे। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा करें कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे शो में शिरकत करने के लिए आए हैं, एक बड़े गुलूकार हैं भारत में, पाकिस्तान में उनका एक नाम है, उन्होंने इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ गाया है, कंपोज़ किए हैं सॉन्ग भारत की फ़िल्मों में के लिए, पाकिस्तान की फ़िल्मों के लिए, लेकिन नहीं, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो हर जगह यही होना चाहिए कि कोई भी सिफारिश जो है वो सिक्योरिटी के आगे इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन पे बिलाल से आपकी बात करवा दीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे फेसबुक के पेज पर वो सब मैंने नोट किए हैं। अब्दुल्ला जो हैं जुनेजो, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, वो ज़रूर मैं करूँगी। तो हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और उस दौरान हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन पर हम उनसे बात करें।
तेरा है नशा मेरे सिर पे छा गया, ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा। तेरा है नशा मेरे सिर पे छा गया, ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा।
Two for your swag, three for the way that you look from the back. Damn, how you do it like that? Make it drop, girl, then bring it right back. She the model type, waist bottle nice. Got a touchscreen phone with the auto type. You got that Zeus on Serato, right? Cause if so, she gon' dance all night. Nah, nah,
nah, nah, nah, nah. Do number mein deva teri uchi lammi heel. Then what? Do number mein deva teri slim fit jean. फिट जीन दो नंबर में देवा तेरी सोनी कैट वॉक नू, दो नंबर में देवा तेरी मिठी मिठी टॉक नू, दो नंबर ने बाकी जेड़े देवा के तो वारी नी।
कुल मिला के सोनी है तू हुसना दी सरकार,
कुल मिला के सोनी है तू हुसना दी सरकार, कुल मिला के सोनी है तू हुसना दी सरकार, दो नंबर दी बाकी तेरी लैम्बोर्गिनी कार नी।
तेनू मुंडे सारे के ना देख दे, तेनू दो नंबर मैं दे दे, मेनू एक नंबर बस दे दे, जा समय सानू भेज दे। ट्विटर ते मारूंगा ट्वीट, बिठाऊंगा ना मेरे पैसेंजर सीट, करूंगा पी गला मेरी स्वीट, साढ़े ना रह के होगी जीत। हाय
गोरा गोरा रंगे तो सूट काला काला नी, काबू विच रवे किवें दिल मत वाला नी। तेरा है नशा, तेरा है नशा, गोरा गोरा रंगे तो सूट काला काला नी, काबू विच रवे किवें दिल मत वाला नी। दो नंबर मैं देवा तेरी जुल सांदे जाल नी, दो नंबर मैं देवा तेरी सेली बड़ी कमाल नी, दो नंबर मैं देवा तेरी जुल सांदे जाल नी, दो नंबर मैं देवा तेरी सेली बड़ी कमाल।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं हमारा म्यूजिक का प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स. मैं हूं सादिया ज़ेब्रांजा और जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में बल्कि तकरीबन पिछले आधे घंटे से मैं आपको बता रही हूं कि बिलाल सईद हमें ज्वाइन करेंगे और वजह भी मैंने बता दी वो क्यों नहीं आ पाए हमारे साथ स्टूडियो के अंदर, लेकिन टेलीफोन पर इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम बिलाल.
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिलाल. अच्छा नहीं हुआ, अब यकीन कीजिए जब आप आ रहे थे ना अंदर तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं असफर ने आपको पासपोर्ट का बताया है कि नहीं बताया, और वही हुआ जिसका मुझे एक सेकंड के लिए ख्याल आया था.
अच्छा, मजे की बात ये कि एक्चुअली मैं अपना यूजुअली वॉलेट साथ रखता हूँ जिसमें मेरा आईडी कार्ड भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैंने सिर्फ अपने कार्ड लिए और मैंने सोचा कि माशाल्लाह कैरी माय वॉलेट. लेकिन चले, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है.
और आपको पता है आपकी वजह, हाँ मुझे जो है खूब तैयारी करके आना पड़ा. वैसे तो रेडियो का शो था कि चले ठीक है हम फेसबुक लाइव भी करेंगे, वो भी हमने बुक कर लिया हुआ था.
आपने मेरी तैयारी चेक नहीं की.
मैंने की है चेक. आपको पता है दूर से मुझे एक बड़ा ही सूटेड वुड, मैंने कहा ये है हमारा हीरो, बाकी तो सब जीन्स शर्ट्स वगैरह में. मैंने कहा अच्छा जी ये है सेलिब्रिटी हमारी जो इतनी तैयारी के साथ आई है. और उससे तो जो नाज है ना आपको इस वजाहत पे, वो तो मुझे वीडियोस में भी नजर आया है. जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपने ये सोचा कि मेरे अलावा कोई और हीरो हो नहीं सकता.
देखिए मैं तो अपने आप को एक बहुत ही अदना सा बंदा समझता हूँ. ये तो मेरे फैंस की जो है वो निगाह मोहब्बत है जो मुझे खास बनाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है.
बिलाल आपका पहला गाना ही हमने सबसे पहले चलाया था और फौरन हमारे फेसबुक पर इतने मैसेजेस आए कि ये हमारा भी फेवरेट है, ये हमारा भी फेवरेट है. झंग से नासिर ने कहा कि ये मुझे बहुत ही पसंद है, और बल्कि मुझे भी वो गाना 12 साल जो है वो बहुत पसंद है. तो मैं देख रही थी कि आप पहले तो म्यूजिक कंपोजर थे और सॉन्ग राइटर, फिर आपने गाना गाया, तो क्यों, मतलब इस तरफ क्या ख्याल आया आपको कि आप अच्छा गा सकते हैं, कंपोजर से ज्यादा आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं?
नो, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था. मेरा जो मकसद था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो यही था कि मुझे सिंगर ही बनना है.
अच्छा.
बट जब मैं स्टूडियो गया एंड आई रियलाइज के एक्चुअली द प्रोड्यूसर रियलाइज कि मैं गाने कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ, एंड ही वाज लाइक मुझे करना चाहिए. तो उसमें अच्छी बात ये थी कि उससे दूसरों को भी मैं हेल्प कर रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था. आई यूज टू राइट फॉर अदर पीपल, तो उनसे उनका भी अच्छा हो रहा था. तो मुझे लगा कि यार इट्स अ गुड वे टू मेक सम मनी एज वेल टू सपोर्ट माय स्ट्रगल, क्योंकि घर वाले तो स्टार्ट में सपोर्ट कर नहीं रहे थे. तो इस तरह मैं कंपोजिशन वाली साइड पे गया और म्यूजिक को प्रोड्यूस करना आहिस्ता आहिस्ता मैंने टाइम के साथ सीखा. बाद में जब एक वक्त आया मैंने रियलाइज किया कि नाउ इट्स द टाइम, आई थिंक अब मैंने बहुत अपने टैलेंट को निखार लिया है, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट. एंड आई वॉज वेरी श्योर व्हाट आई एम डूइंग. तो फिर मैंने खुद का स्टूडियो बनाया और पहला ही गाना जो मैंने प्रोड्यूस किया वो 12 साल था, और दूसरा गाना जो मैंने प्रोड्यूस किया वो देसी ठुमका था. तो दोनों ही हिट थे.
मैं यही देख रही थी कि ऐसा रेयरली होता है कि किसी ने पहला गीत गाया हो और वो इतना ज्यादा हिट हो जाए. आपको ये आइडिया था कि ये गाने हैं इस तरह के कि आवाम को और लोगों को पसंद आए और हिट हो जाएंगे?
असल में जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ऐसी बात मुझे पता था क्योंकि उसके पीछे एक बहुत लंबी जद्दोजहद है. ये एक गाना जो पहला गाना है इसके पीछे 7 साल की स्ट्रगल है, सही है? तो लोगों को तो वो बिहाइंड द सीन नहीं पता कि मैंने कितनी स्ट्रगल की, मैंने कितना सीखा, मैं कितना अपने आप को अपने टैलेंट को निखारा. तो मेरी जो स्टडी थी म्यूजिक को लेकर उसने मुझे इस जगह पे लाके खड़ा किया कि मुझे पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि दिस इज द शोर शॉर्ट थिंग, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ.
बिलाल जी कहिए फिर बात करते
जी. ये जो, और मुझे लगता है कोई भी बंदा जो नया जो म्यूजिक करना चाहता है, द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज आप अपनी ओरिजिनलिटी को लेके आए. Don't try to be somebody else. आप अगर बिलाल सईद जैसे गाने गाएंगे तो लोग बिलाल सईद के गाने सुनेंगे, आपके नहीं सुनेंगे. लेकिन अगर आप अपने जैसा कुछ गाएंगे जो कोई और नहीं गा सकता, तो फिर तो हमें जो 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 नए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ ओरिजिनलिटी ही है जिसकी खूबसूरती है, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और बहुत ही यूनिक बनाया है, हमें सिर्फ उसको पहचानना होता है.
एग्जैक्टली. अच्छा बिलाल, आपको बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ गाने का मौका मिला, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे गाने का मौका मिला, आपको बहुत ज़्यादा नॉमिनेशंस मिली अवार्ड्स की, और बड़े बड़े रैपर्स के साथ आपने गाया. इसको आप लक समझते हैं या आप समझते हैं कि आपके काम को सही उसकी जगह लोगों ने सही पहचान दी?
मुझे लगता है दो चीजें, एक तो इस ब्लेसिंग है सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से, और दूसरा ये है कि जो मैं स्त्री मैंने मेहनत की है, मुझे ज्यादा खुशी इस चीज से होती है कि जितने भी सिंगर के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, फॉर एग्जांपल वो नेहा कक्कड़ जो इस वक्त आपको पता है बहुत अच्छा जा रही है, वो हिमिया है जो कि रैप पंजाबी रैप म्यूजिक को बनाने वाला युवा है, और भी जितने लोग थे इन्होंने जब मेरे साथ काम किया सो इट वॉज लाइक म्यूचुअल इंटरेस्ट वो हमारे, उन्होंने बेस्ट बात ये है कि बड़ी रिस्पेक्ट से काम किया है, और वो रिस्पेक्ट क्यों मिलती है लोगों से, बिकॉज दे नो माई स्ट्रगल, दे नो आई एम रियल, दे नो जो मैं करता आ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे बहुत एफर्ट है। ये कोई वन, जब मेरा पहला गाना है तो लोगों ने सोचा है कि यार ये वन हिट वंडर वाला सीन है, एक गाना फ्लूक हो गया बस हिट हो गया, बट देन आप अगर देखें इस जर्नी को, इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years, जब 12 साल आया था तब से लेके आज तक हर बार मैंने म्यूजिक में कुछ नया करने की कोशिश की, और हर बार मैंने लोगों के दिल जीते हैं उस नए जोन में जाकर। मैं चाहता तो मैं 12 साल जैसे गाने बार बार बना सकता था, पर आप मुझे एक भी गाना बताएं जो 12 साल की तरह का हो, मैंने कभी भी नहीं रिपीट किया।
वर्सेटिलिटी तो बिल्कुल आपके गानों में है, यही एग्जैक्टली बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इतने वर्सेटाइल किस तरह हैं आप, कि हर गाना जो है वो एक दूसरे से उसका मूड डिफरेंट है, उसके लिरिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसा किस तरह आप कर सकते हैं?
देखिए जिंदगी में आप हमेशा खुश नहीं रहते, आप हमेशा सैड नहीं रहते, आप हमेशा रोते नहीं है, हमेशा हंसते नहीं है, हमेशा रोमांस के मूड में नहीं होते, कभी होते भी हैं। सो ये सारे जो पार्ट है जिंदगी के मेरे ही हैं, आई ओन, लाइक मैं इनको ओन करता हूँ। जब कभी मैं अच्छे मूड में होता हूँ किसी, तो मैं अच्छा कोई हैपनिंग गाना लिख देता हूँ, कभी सैड हूँ तो कुछ सैड गाना लिख देता हूँ। सो जो थोड़ी सी वर्सेटिलिटी को जो सपोर्ट करती है चीज, वो ये है क्योंकि मैं अपना म्यूजिक खुद बनाता हूँ, तो इसलिए मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ तो मैं एज एन अपने जो स्पेसिफिक जॉनर से हटके म्यूजिक सुनता हूँ। मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, मैं रैप म्यूजिक सुनता हूँ, रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, मैं हिप हॉप सुनता हूँ, सब सुनता हूँ, तो वो इसीलिए जो है वो वर्सेटिलिटी को सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि खुद बनाना होता है तो जो भी दिल से निकले वो मैं निकाल के रख देता हूँ, और समहाउ लोगों के दिल को जाके लगता है, बिकॉज जब दिल से कुछ निकले तो वो दिल तक जाके लगता है।
और आपकी एक और चीज जो आपके गानों या आपकी वीडियोस में देख के महसूस होती है वो है बॉडी लैंग्वेज, तो वो बहुत आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, और आपके जितने भी गीत हैं या उन पे आपका जो रिदम है और जितनी भी आप चीज जो चीज नोटिस करते हैं सबसे ज्यादा वो कॉन्फिडेंस है आप, तो आप ये पूरी तरह जैसे आप इन हैं और आपको यकीन है जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस से आता है या मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ काम करके आता है, कैसे आता है और आप में किस तरह से है?
डेफिनेटली देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन मैं आपके फैंस के साथ ही शेयर करता हूं, मैं एक्चुअली बहुत ही शाय बंदा हूं।
लगता नहीं है।
आई एम अ रियली शाय पर्सन, और मैंने इस चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज आप सोचें एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं शाय बंदा हूँ, दूसरी तरफ मैं जाता हूँ 10,000 लोगों का क्राउड भी फेस करता हूँ,
बिल्कुल,
और वीडियोज में भी आप देख रहे हैं, तो ये चीज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनमें टैलेंट है लेकिन वो अपनी शाइनेस की वजह से वो इतना आगे नहीं आते। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि मैं इस तरह नहीं होता बैक बेंचर, मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ, मुझे इतनी, मैं आगे बढ़ के लाइमलाइट लेने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने इस पे बड़ा वर्क मतलब काम किया, मेहनत की, और वीडियोज में ऑब्वियसली ये एक एक्सपीरियंस आपको कर करके आता है, स्पेशली
जो एक्टिंग है, बिल्कुल
ये अच्छा, आपको कभी भी एक दिन में नहीं आती।
हमारे एक लिसनर हैं अब्दुल्ला जुनेजो, उन्होंने सवाल किया है लाड़काना से आपसे कि आपको अपना सबसे ज्यादा कौन सा गीत पसंद है और कौन सा जो आप समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं बन पाया।
सवाल तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब जो है वो मेरे लिए तो मेरे सारे, जो भी एक एक गाना जो आता है वो मैं अपने दिल से पूरे दिल से जो है उसको गाता हूँ। और हाँ बिल्कुल आप सब हैरान हो जाएंगे, जो 2 नंबर गाना है ये मैं एल्बम में डाल ही नहीं रहा था, मुझे 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 हालांकि मेरा ही गाना है पर
तो
मुझे
बहुत अच्छा गाना है,
दिस इज नॉट मी। और वो जबरदस्ती जो मेरे रिकॉर्ड लेबल, उन्होंने कहा नहीं यार वी नीड वन कमर्शियल सॉन्ग डाल देते हैं, तो वो देखे इतना लोगों ने पसंद किया।
सही, तो हम कह सकते हैं कि वो जरा बॉटम पे आता है आपकी अपनी चॉइस में। अच्छा तो एक और सवाल हमें किया है, नाम में हाँ सलमान अहमद है, उन्होंने किया है, बल्कि ये पहले वाला तो नासिर ने किया था झंग से, अब्दुल्ला ने ये पूछा है कि किसी आपके किसी दोस्त ने आपको अप्रैल फूल बनाया क्या, उनका ये सवाल है आपसे।
मजे की बात ये कि ये जो बराए नाम दोस्त होते हैं ना हमारे, ये अप्रैल के अलावा भी मैं फूल बनाते रहते हैं।
बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने।
लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो तो कभी भी फोन नहीं बनाते कि अप्रैल हो या जुलाई हो या
अच्छा उसने एक और बात पूछी थी कि आप हैं कहाँ के, तो वो मैंने बता दिया कि सियालकोट से हैं, तो ठीक कहा मैंने?
जी मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, बिलोंग सियालकोट, लेकिन मैं रहता लाहौर में।
अच्छा अच्छा, तो आप ये बताएं कि कब से, जैसे ये बड़ा ही एक टिपिकल सा सवाल है कि कब से शौक है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि आप ये पूछेंगे, क्या वाकई आप गुनगुनाया करते थे दूसरों के गीत सुन के, म्यूजिक सुन के आपके हाथ पांव उसी तरह थिरकने लगते थे, या फिर बाद में आपने सोचा कि इस तरफ ज्यादा आना चाहिए, लोगों का रुझान है या फिर इसमें ज्यादा स्कोप है, क्या वजह रही?
नहीं, स्कोप वाली बात तो देखिए बहुत बाद में आती है। पहली चीज तो आपको पहचानना, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं I was a fast bowler. तो जब मैं बॉलिंग करता था तो मुझे कभी भी उसमें वो स्पार्क नजर नहीं आया, मुझे लगता था मीडियोकर बॉलिंग करता हूँ।
अच्छा,
तो मैंने फिगर आउट किया कि यार ये वाली गेम नहीं है। हालांकि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, मैंने एज अ कैप्टन खेली है, मैं हमेशा लीड करता, मतलब आई हैव वन ऑफ दोस थिंग्स कि मुझे लीड करना है हर चीज को, जो मैं करूँ मुझे उस पर सबसे आगे होना है, सबसे बेस्ट करके दिखाना है।
सही।
तो लेकिन फिर मैंने जब रियलाइज किया कि क्रिकेट इज नॉट माई थिंग, समहाउ बचपन से ही मुझे गाने पूरे पूरे याद हो जाते थे, यानी मैं कोई गाना सुन लेता था तो मुझे याद हो जाता था, और मेरे डैड को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, तो वो शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर एक चीज बन रही थी। तो मेन चीज पैशन है।
सही।
पैशन है, बाकी स्कोप, फेम, पैसा, ये सारी बाद में बातें आती है। और मेरा नहीं ख्याल के दुनिया में फेम, पैसा या इस तरह की चीजें आपको कभी उनके पीछे भागने से मिलती है, ये आपके पीछे खुद आती है, आपको अपने काम पे फोकस करना होता है
और मेहनत करनी होती है
100%। मेहनत के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
अच्छा, तो आपको खुद कौन सा सिंगर पसंद है?
बहुत सारे लोग मुझे बड़े पसंद है, मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, राहत फतेह अली खान साहब, आतिफ असलम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, आपदा प्रवीण साहब बहुत अच्छा गाती है, नए जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं, तो काफी सारी, पर मैं ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ जो थोड़ी फोक वॉइसेस होती हैं, थोड़ी रॉ वॉइसेस होती हैं, लाइक बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाली, कितनी अट्रैक्ट नहीं करती मुझे आवाज, थोड़ी सी रॉ वाली पसंद है।
अच्छा, तो बिलाल ये बताएं, आपने ट्रैवल किया बहुत और मुख्तलिफ तरह के क्राउड्स आपने हैंडल किए हैं, कहाँ सबसे अच्छा लगा परफॉर्म करके आपको?
मुझे सबसे अच्छा कहाँ पे लगा, ये भी मुश्किल सवाल है, बड़ा सबसे ज्यादा मजा पाकिस्तान में ही परफॉर्म करके आता।
अच्छा, तो ये बताइए, इंडस्ट्री की बात बताइए, आपने म्यूज़िक कंपोज किया, आपने गाया जाके, भारत की इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी है, उसकी एक बड़ी तारीख है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वहाँ पर, और अगर बहुत प्रोफेशनल, और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हम उतने अभी आगे नहीं, टेक्नोलॉजी में भी गए और बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी, तो क्या फ़र्क मेन आपने देखा दोनों जगहों पर काम करके?
हाँ, मुझे लगता है कि स्पेशली विद म्यूज़िक कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का हाथ तो नहीं है इसमें।
सही।
हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर देखा कि आप जिस भी इंडस्ट्री, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप अगर पाकिस्तान में हैं या बाहर किसी इंडिया में हैं या अमेरिका में, तो द मेन थिंग इज कि आप अपनी ही ओरिजिनलिटी को आपने हमेशा वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना है।
सही।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो नई यूथ आ रही है वो क्या म्यूजिक सुन रही है, और आपने अपने फ्लेवर को कैसे इस म्यूजिक में ऐड करना है, तो दिस इज द की, और मैंने वही करने की कोशिश की है कि जब पहले गाने से लेके अब तक यही किया कि टाइम के साथ म्यूजिक को अपग्रेड जरूर किया है, यार अब जो नई जनरेशन है वो ये सुन रही है, बिकॉज यू शुड नो कि आपको सुनने वाले कौन लोग हैं।
तो कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा गीत जिसको शूट करने में या जिसको गाने में या जिसको लिखने में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई हो?
मुश्किल वो मेरा गाना है परांदे
जी,
उसकी वीडियो में एक शॉट है जिसमें वो शेर के साथ, टाइगर है वो
जी, जी।
उसके साथ कुछ शॉट है, तो वो मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था।
अच्छा, तो वो रियल वाला था, मैंने तो समझा बस एम ही।
नहीं नहीं नहीं, वो रियल वाला था, यकीन कीजिए कि 5 मिनट के लिए वो टाइगर था उधर, और बड़ी मुश्किल से हम 2-3 शॉट से निकाल पाए, छोटे छोटे, क्योंकि शॉट लेने के लिए जो उसका ट्रेनर था उसको मुझसे और उससे दूर होना था।
अच्छा।
तो मैं और वो अकेले होते थे, तो वो बिल्कुल ही, आप जो मर्जी कह लें, शेर शेरी होता था।
शेरी होता। अच्छा, तो डर नहीं लगा आपको बिलाल? मैं तो बिल्कुल उसको ट्रिक समझ रही थी।
डर तो मतलब अंडरस्टेटमेंट है, क्या बात कर रही। मुझे याद है जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे डायरेक्टर से वो कह रहा था Hey, you are a bigger animal than this. You can do it. Or maybe karun. Yes, 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 I can do it. Lekin jaise sher samne aata tha main kehta nahi 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 bhai ke rahi hai.
बहुत फनी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. अच्छा, इसके अलावा और कोई बड़ा वियर्ड किस्म का आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो? आप इतना ज़ाहिर है इधर उधर आते जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कोई बड़ा वियर्ड सा इंसिडेंट आज के अलावा?
आज वाला तो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं था.
लेकिन मेरे लिए तो था ना, मैं इतना इंतजार कर रही थी, इतना शौक था हमें मिलने का, सेल्फी मेरी रह गई.
अरे यार, तो सेल्फी लेने आप आ जाती नीचे, ये आपने क्या किया?
अच्छा, तो कोई बताइए ऐसा इंसिडेंट हुआ
कोई वियर्ड. कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब हाँ फ्लाइट मिस हुई है बहुत सारी जिंदगी में, मैंने बेतहाशा फ्लाइट मिस की.
इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट का इशू है क्या?
मैनेजमेंट का इशू भी होता है, लेकिन मैनेजर किसी हद तक आपको पुश कर सकता है. अगर मैं एक जगह पे मैं थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का बंदा हूँ, तो अगर मेरा दिल कर रहा है मैं इधर रुक जाऊँ तो मैं रुक जाता हूँ, फिर मिस. और सम टाइम, और हाँ, मेरी टाइम कैलकुलेशन बहुत गलत है.
वो इसीलिए
आपके शो में बड़ी बात है, मैं टाइम पे आ गया हूं, वरना जिंदगी
बिल्कुल टाइम पे आए हैं आप. और किसी काम नहीं आ सका वो आपका टाइम पे.
मैं टाइम पे नहीं आता, यकीन माने.
बस ठीक है, आप लेसन लर्न हो गया.
इकबाल हमेशा देर से आता है, वो वाली थ्योरी काम करती है.
अच्छा, तो बिलाल, सेलिब्रिटी बनने के बाद आपने कुछ जो सीखा हो अपने मुताबिक,
अपने ये जरूर सीखा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है वो ये है कि हमारे पास जो है हम उसको अप्रिशिएट करें. ये सबसे मुश्किल है. इंसान की नेचर ऐसी है कि वो हर वक्त आगे बढ़ता है और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भागता है. लेकिन जो मैंने सीखा और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ अब, वो ये है कि ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जो आपके पास है बस उसको जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है.
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने बिलाल, जबरदस्त. बिल्कुल. अच्छा, तो बिलाल, टाइम बहुत कम रह गया है, एक वादा भी करना है आपने हमारे साथ, फेसबुक लाइव करना है, टाइम मैं आपके साथ तय कर लूंगी.
तो वादे तो टूट जाते
हैं. अच्छा, तो आप, अच्छा तो ठीक है, आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए कोई बात कहना चाहते हो, या फिर ऐसे लोग जो फॉलो करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को आपकी तरह, तो उनके लिए क्या एडवाइस है?
उनके लिए एडवाइस है कि देखिए, अगर तो आपने कोई ड्रीम देखा है तो वो किसी रीजन, उसके पीछे वजह है कि वो ड्रीम आपको दिखाया गया.
सही,
आप उसको कभी मत छोड़ो. और हाँ, खुली आंखों से सांस लें
और उनके लिए पूरी मेहनत से काम भी करें. बहुत जबरदस्त.
नहीं बदलेगा कुछ भी ना बदलने से, हाथ खाली ही रह जाएंगे हाथ मलने से.
थैंक यू सो मच जी.
इनके लिए खोल आंखें, नहीं ताबीर मिलती करवटें बदलने.
क्या बात है, बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया. टाइम हमारा ख़त्म हो गया. सामईन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी बिलाल सईद के साथ हमारी गुफ्तगू. इसके साथ ही सादिया ज़ेबरान झा और फायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. और बिलाल सईद का कंपोज़ किया हुआ, लिखा हुआ, गाया हुआ ये गीत जो उन्होंने पेशावर स्कूल के हमले में शहीद होने वाले बच्चों के लिए गाया, आप सुनिए और हमें इजाज़त दीजिए.
रोक ले आज मुझको मेरी माँ, भेजना इतना दूर तू वहाँ, के डर लगता है घर हो गया तुझसे दूर, करूँगा क्या मैं घर हो गया तुझसे दूर. मुस्कुराई माँ, मुस्कुराई बेटे का माथा चूमा, उसे बोला मेरे लाल तुझे है आगे बढ़ना, दुनिया से तुझे नहीं है डरना, तेरी आंखों तेरे साथ है तेरी माँ, खफा मत होना, सब देख लेगी ये माँ। मान कर तेरी आया था नमा, देख कितना खौफ छाया है यहाँ, तू कहाँ रह गई है मेरी माँ।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
फिलाडेल्फिया की फायरिंग का मुश्तबे फर्द जबकि सलाखों के पीछे है, ट्रंप इंतजामिया और शहर के हुकाम के दरमियान इल्जामात का तबादला हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुश्तबे मुसल्ला शख्स, जिसका तवील मुजरिमाना रिकॉर्ड है, एक बदमाश आदमी था और इसे बाहर नहीं होना चाहिए था। ट्रंप के तकरर करदा अमरीकी अटॉर्नी ने फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लैरी क्रेजनर पर इल्जाम धरा कि उन्होंने फायरिंग का मौका फराहम किया, जिसके नतीजे में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका की ज़लती शाहोक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस वाक़े ने और इसके साथ ही इस महीने के शुरू में बड़े पैमाने पर फायरिंग के 2 वाक़यात ने इंतजामिया पर दबाव डाला है कि वो असलहे के कानून से निपटे, जो काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। फिलाडेल्फिया की फायरिंग में मुलव्वस मुश्तबे शख्स को बुध के दिन देर गए उस वक्त पकड़ा गया जब घंटे भर फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसमें 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिलाडेल्फिया इंक्वायरर की एलिजबेथ रॉबर्टसन का कहना है कि मुश्तबे शख्स मॉरिस हिल का तवील मुजरिमाना रिकॉर्ड है और सदर ट्रंप समेत बहुत से अमरीकियों का कहना है कि उसे आज़ाद नहीं होना चाहिए था और न ही हथियार हासिल करने के काबिल होना चाहिए था। सदर ट्रंप कहते हैं, ऐसे लोगों को जेल में बंद होना चाहिए, इसे बाहर सड़क पर आज़ादाना घूमने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। सदर ट्रंप के तकरर करदा अमरीकी अटॉर्नी विलियम मैक्सवेन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें इस बात के लिए फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लैरी क्रेजनर पर इल्जाम धरा गया है कि उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के आदाब को मलहूज खातिर नहीं रखा, जिसकी वजह से बकौल उनके बुध की रात फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें मुतादिद पुलिस वाले जख्मी हो गए। क्रेजनर ने इसके जवाब में कहा है कि हुकाम ने पॉलिसियों के मुताबिक कार्रवाई की है और वो इस बात की पेशगोई नहीं कर सकते थे कि हिल क्या करेगा। वो कहते हैं,
You know, I don't think it's fair to expect some level of perfect knowledge on the part of police or prosecutors, but it is obvious.
मेरा ख्याल नहीं कि पुलिस से या इस्तगासा से बाज़ाब्ता और बिल्कुल दुरुस्त मालूमात की तवक्को की जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये जाहिर है कि इस वाक़े में एक ऐसा शख्स मुलव्वस था जिसे आज़ाद नहीं होना चाहिए था, और ये भी वाज़े है कि उसका तवील मुजरिमाना रिकॉर्ड था जो काफ़ी पुराना था। फिलाडेल्फिया के मेयर जिम कैनी ने आतिशी असलहे पर सख्त कंट्रोल के मुतालबे का इआदा किया। वो कहते हैं,
Our officers need help. They need help. They need help with gun control. They need help with keeping.
पुलिस वालों को असलहे पर कंट्रोल की सूरत में मदद की जरूरत है, ताकि ऐसे हथियारों को लोगों से दूर रखा जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि आतिशी असलहे बदकुमाश और बीमार जहन के लोगों के हाथों में ना जाएं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ज़हनी सेहत की देखभाल में कमी बड़े पैमाने पर शूटिंग की वजह है। सदर ट्रंप के अल्फाज,
These people are mentally ill. And we have to study that also, because you know it's them. They pull the trigger. The gun doesn't.
ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार हैं, और हमें इसका भी जायजा लेना चाहिए, इसलिए कि ये वही लोग हैं जो फायरिंग में मुलव्वस होते हैं। बंदूक खुद बखुद नहीं चलती, वो ऐसे लोग चलाते हैं। लिहाजा हमें ज़हनी आर्जे के मामले पर संजीदगी से गौर करना है, और हम ये काम उस नहज पर कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं किया गया। ये अल्फाज थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के। रायामा के जायजों से पता चलता है कि अमरीकियों की अक्सरियत ये चाहती है कि बंदूक फरोख्त किए जाने से पहले खरीदार का तफसीली पस मंजर मालूम किया जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आतिशी असलहा मुजरमों या जहनी तौर पर बीमार लोगों के हाथों न लग जाए। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि शहरियों को ऐसे हथियारों की फरोख्त न की जाए जिनको हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। असलहे पर कंट्रोल के कवानीन को ऐसे कानून साजों की जानिब से कांग्रेस में रुकावट का सामना है, जिन्हें मुल्क की ताकतवर गन लॉबी یعنی این آر اے کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہینے کی فائرنگ کے واقعات نے سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل کو یہ وعدہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ گن کنٹرول کے بل پر رائے شماری کرائی جائے گی۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔